नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के दृष्टिकोण ने आपसी संबंध बनाने, निर्णायक कदम उठाने और संकटकालीन परिस्थितियों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने की क्षमता को दर्शाया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से टेलीफोन पर पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर विचार विमर्श किया। स्लोवेनिया ईंधन की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण लागू करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना। 125 लोगों को ले जा रहा कोलंबिया का सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, बचाव अभियान जारी। और विश्व आज तपेदिक दिवस मना रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के दृष्टिकोण ने आपसी संबंध बनाने, निर्णायक कदम उठाने और संकटकालीन परिस्थितियों का कारगर तरीके से प्रबंधन करने की देश की मजबूत क्षमता को उजागर किया है। नई दिल्ली में कल शाम एक निजी मीडिया समूह के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में जारी अनिश्चितता के बावजूद भारत आत्मविश्वास और विकास की अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है।
भारत हर आपदा का सामना करता हुए आगे बढ़ रहा है। इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान है। 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों में विश्व ने भारत की नीतियों, रणनीतिक सोच और क्षमताओं को पहचाना है। इससे पहले कल लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद देश में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से टेलीफोन पर बात की। एक रिपोर्ट।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हुई बातचीत में पश्चिम एशिया के संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर चर्चा हुई। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कल सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के राजदूतों से भी मुलाकात की। अकेले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में ही करीब 80 लाख भारतीय रहते हैं। इस बैठक में बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर के राजदूत भी उपस्थित थे। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने और 6 राजदूतों ने पश्चिम एशिया के संघर्ष पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने क्षेत्र में भारतीय समुदाय को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने श्रीलंका के विदेश मंत्री विजेता हेराद से भी बात की और पश्चिम एशिया संघर्ष के परिणामों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत पड़ोसी प्रथम नीति और विजन महासागर के प्रति प्रतिबद्ध है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर एयरवेज ने 20 से 22 मार्च के बीच भारत के लिए 25 उड़ानें संचालित की हैं, जिनसे लगभग 7,550 भारतीय नागरिक वापस आए। दूतावास की ओर से जारी परामर्श में भारतीय समुदाय से अपील की गई है कि वे कतर के प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों और सुझावों पर नजर रखें और उनका पालन करें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने युद्ध विभाग को ईरान में प्रमुख ऊर्जा और बिजली केंद्रों पर नियोजित हमलों को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्देश दिया है। व्हाइट हाउस में श्री ट्रंप ने कहा कि यह निर्णय पिछले 2 दिन में अमेरिका और ईरान के बीच हुई प्रारंभिक बातचीत के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच व्यापक समझौते पर पहुंचने के लिए बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर पाए। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एक बयान में ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमरीका के राष्ट्रपति की हालिया टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य संभावित सैन्य योजना के लिए समय लेना और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव कम करना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। स्लोवेनिया ईंधन की बिक्री और उसके वितरण पर नियंत्रण लागू करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस संघर्ष के कारण पूरे क्षेत्र में ईंधन की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। स्लोवेनिया में निजी चालकों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 50 लीटर ईंधन खरीदने की सीमा तय की गई है, जबकि व्यवसायी और किसान 200 लीटर तक ईंधन खरीद सकते हैं। ये कदम वहां ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बाद उठाया गया है, क्योंकि विशेष रूप से ऑस्ट्रिया जैसे पड़ोसी देशों के चालक सस्ते ईंधन की तलाश में सीमा पार करके स्लोवेनिया आ रहे थे। जापान की वित्त मंत्री सात्सुकी कातामाया ने कहा है कि सरकार बढ़ती महंगाई के बीच सभी मोर्चों पर काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कच्चे तेल की कीमतों में संभावित हस्तक्षेप की पुष्टि नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि कच्चे तेल के बाजार में सट्टेबाजी से मुद्रा प्रभावित हो रही है। सुश्री सात्सुकी ने अर्थव्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से व्यापक कार्रवाई का आश्वासन दिया। दक्षिण पश्चिमी कोलंबिया में उड़ान भरने के कुछ समय बाद एक सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चालक दल के 11 सदस्यों सहित 125 लोग सवार थे। हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 77 लोगों को जीवित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने बताया कि पेरू और इक्वाडोर की सीमा पर स्थित अमेजन प्रांत के पुएर्टो लेगुइजामो में यह दुर्घटना हुई। न्यूयॉर्क के लागार्डिया हवाई अड्डे के रनवे पर हुई विमान दुर्घटना में 2 पायलटों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। दुर्घटना के बाद एयर कनाडा के सीईओ माइकल रूसो ने हेल्पलाइन और विशेष सहायता दल की घोषणा की है। रविवार देर रात को मॉन्ट्रियल से आ रहा एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान रनवे पार कर रहे पोर्ट अथॉरिटी के एक दमकल वाहन से टकरा गया था। आज विश्व तपेदिक दिवस है। इसका उद्देश्य तपेदिक के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस वैश्विक महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को तेज करना है। ये दिवस डॉक्टर रॉबर्ट कोच की ओर से 1882 में तपेदिक के रोगाणुओं की खोज की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा है कि तपेदिक आज भी एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है, जिससे विश्वभर में लाखों लोग प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि तपेदिक मुक्त भारत अभियान ने शीघ्र निदान को बढ़ावा देने, मुफ्त उपचार सुनिश्चित करने, पोषण संबंधी सहायता को मजबूत करने और रोगी देखभाल में सुधार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस वर्ष विश्व तपेदिक दिवस का विषय है, हां हम तपेदिक समाप्त कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गर्म करने वाली गैसों के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी की जलवायु पहले से ही कहीं अधिक असंतुलित होने की चेतावनी जारी की है। इस ऊर्जा असंतुलन के कारण पिछले वर्ष समुद्र का तापमान नए स्तर पर पहुंच गया। इसके कारण धरती पर बर्फ की चोटियां लगातार पिघल रही हैं। पृथ्वी की अतिरिक्त ऊर्जा से समुद्र अधिक गर्म हो रहा है और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। इससे तूफान की तीव्रता और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि इस वर्ष के अंत में अल नीनो से गर्मी पड़ने की संभावना है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरस ने जलवायु, ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देशों से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने का आह्वान किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के दृष्टिकोण ने आपसी संबंध बनाने, निर्णायक कदम उठाने और संकटकालीन परिस्थितियों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने की क्षमता को उजागर किया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से टेलीफोन पर पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर विचार विमर्श किया। स्लोवेनिया ईंधन की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण लागू करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना। 125 लोगों को ले जा रहा कोलंबिया का सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, बचाव अभियान जारी और विश्व आज तपेदिक दिवस मना रहा है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।